आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर।
सुस्वागतम, मेरा नाम है स्वाति शर्मा और SBS हिंदी के मेलबर्न स्टूडियो से हिंदी कार्यक्रम लेकर मैं एक बार फिर हाजिर हो गई हूँ आज यानी शुक्रवार 6 फरवरी 2026 को। दोस्तों, आज है साल का 37वां दिन। हमेशा की तरह आइए सबसे पहले प्रोग्राम का शुभारंभ करते हैं इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राष्ट्र के वुरुंजुरी और वुईवुरुंग लोगों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हुए। साथ ही जिनकी भूमि से यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है उन सभी मूल निवासियों और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों का भी हम आदरपूर्वक सम्मान करते हैं। दोस्तों, आइए फटाफट एक नजर डाल लेते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होगा। प्रोग्राम की रूपरेखा पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले रोज की तरह देश और दुनिया की मुख्य खबरें सुनेंगे न्यूज फ्लैश के साथ। इस हफ्ते RBI ने नकद दर यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। विशेषज्ञ इस पर क्या राय दे रहे हैं उस पर भी एक अंश होगा आज आपके लिए। साथ ही आपको मिलवाएंगे न्यूरोसर्जन डॉक्टर रणधीर जिथू से, जिन्हें हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेडल से सम्मानित किया गया है। एक खास बातचीत भी सुनेंगे ब्रिटिश भारतीय नर्तक आकाश उदेद्रा के साथ, जो इस वक्त अपने शो सॉन्ग्स ऑफ द बुलबुल के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। और आखिर में शो के मूड को बनाएंगे संगीतमयी कुछ प्यारे से गीतों के साथ। अगर आपकी भी कोई गीत की फरमाइश हो तो मुझे अभी लिख भेजिए, नंबर है 04397997667। कोशिश रहेगी कि आज ही के शो में उसे बजा दूं। अपनी मौजूदगी का एहसास मुझे कराना मत भूलिएगा अपने संदेशों के जरिए। उसके लिए आप यूं तो मुझे हाय हेलो करके भी मैसेज कर सकते हैं, क्या हाल चाल है ये भी बता सकते हैं। लेकिन उसके अलावा मेरे पास आपके लिए एक गिव अवे है, जिसके जरिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपसे जितने ज्यादा लोगों से बातचीत हो सके वो आज कर ली जाए। तो चलिए, ये सब बताऊंगी, गिव अवे क्या है और आज का सवाल क्या है ये भी बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले एक जायजा ले लेते हैं आज के मुख्य समाचारों का। नमस्कार, प्रस्तुत है शुक्रवार 6 फरवरी 2026 के मुख्य समाचार स्वाति शर्मा के साथ। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी और उनके इंडोनेशियाई समकक्ष ने जकार्ता में औपचारिक रूप से एक द्विपक्षीय सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध और गहरे हुए हैं। अल्बनीजी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मुलाकात कर ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया ट्रीटी ऑन कॉमन सिक्योरिटी पर हस्ताक्षर किए। इस संधि की घोषणा पहली बार पिछले नवम्बर में की गई थी। इजरायली राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग की 4 दिवसीय यात्रा के दौरान सोमवार 9 फरवरी को पैलेस्टाइन एक्शन ग्रुप द्वारा आयोजित सिडनी प्रदर्शनों को सीमित करने की कोशिश में 3,000 से अधिक पुलिस अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। इससे पहले इस सप्ताह न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिंस के फैसले के बाद पुलिस ने सिडनी के इनर सिटी के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी किया था। प्रीमियर का कहना है कि यह फैसला पैदल यात्रियों और वाहन चालकों के लिए होने वाली असुविधा को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। लिबरल पार्टी के फ्रंट बेंचर एंगस टेलर का कहना है कि सुजन ली के नेतृत्व को चुनौती देने की उनकी कोई तत्काल योजना नहीं है, लेकिन वे पार्टी के शीर्ष पद पर काम करना चाहेंगे। सांसदों और सेनेटरों को व्यापक रूप से उम्मीद है कि टेलर आने वाले हफ्तों में लिबरल नेतृत्व के लिए ली को चुनौती देंगे, जब अग्रणी दावेदार एंड्रयू हेस्टी ने खुद को दौड़ से बाहर कर लिया है। एक व्यक्ति जिस पर कथित तौर पर एक महिला को चाकू मारने और घर में घुसपैठ के बाद 2 वाहनों को कारजैक करने का आरोप है, पुलिस की गोली लगने से मारा गया है। पुलिस को आज सुबह न्यू साउथ वेल्स के मिड नॉर्थ कोस्ट से टनकरी में एक संपत्ति पर बुलाया गया, जहां एक व्यक्ति द्वारा चेन सॉ और चाकू से लैस होकर घर में घुसपैठ की रिपोर्ट मिली थी। आरोप है कि उस व्यक्ति ने 28 वर्षीय महिला को चाकू मारा, एक यूट वाहन में घर से भागा और फिर एक 4-व्हील ड्राइव को कारजैक कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसका पीछा शुरू किया। पुलिस के अनुसार उन्होंने कई बार टेजर का इस्तेमाल किया, लेकिन जब वह एक अधिकारी की ओर दौड़ा तो उसे गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस मंत्री मेलान्द्री मैकार्थी का कहना है कि पर्थ में हुई कथित बमबारी की कोशिश को आतंकी कृत्य घोषित किए जाने के बाद उनकी प्राथमिकता सामुदायिक सुरक्षा है। उन्होंने एबीसी के रेडियो नेशनल ब्रेकफास्ट को दिए एक साक्षात्कार में इन्वेजन डे रैली पर हुए हमले को आधिकारिक रूप से वर्गीकृत करने में 9 दिनों की देरी को लेकर उठी चिंताओं पर बात की। उन्होंने कहा कि प्रथम राष्ट्र समुदाय के लोग बहुत डरे हुए, नाराज और कुछ हद तक भ्रमित महसूस कर रहे हैं। रिजर्व बैंक की गवर्नर का कहना है कि केंद्रीय बैंक का अनुमान है कि मुद्रास्फीति को 2-3% के लक्ष्य दायरे में लौटने में 2028 तक का समय लगेगा, जिससे आने वाले महीनों में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को झटका लगा है। मिशेल बुलॉक ने आज 6 फरवरी को सेनेट एस्टिमेट्स के सामने सवालों का सामना किया, जब इस सप्ताह की शुरुआत में रिजर्व बैंक ने 2 वर्षों से अधिक समय के बाद पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई। केंद्रीय बैंक ने मुद्रास्फीति को लेकर चिंताओं का हवाला देते हुए रेट को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 3.85% कर दिया। बाल शोषण से जुड़े 596 आरोप लगाए जाने के बाद क्वींसलैंड का एक व्यक्ति आज अदालत में पेश हो रहा है। 27 वर्षीय इस व्यक्ति को तब हिरासत में ले लिया गया जब पुलिस ने इस सप्ताह उसके मैरीब्रो स्थित घर से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। आरोप है कि इन डिवाइसेस पर खुद की बनाई हुई बाल शोषण सामग्री पाई गई। विशेषज्ञ पुलिस जांचकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया और विदेशों में 459 पीड़ितों के खिलाफ कथित अपराध से जुड़े 23,000 से अधिक वीडियो और तस्वीरें मिली हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने वाशिंगटन में ब्रिटेन के राजदूत के रूप में पीटर मेंडेलसन की नियुक्ति के लिए ब्रिटिश जनता से माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि उन्हें मेंडेलसन के उन दावों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था जिनमें उन्होंने कहा था कि वे जेफरी एपस्टीन को मुश्किल से ही जानते हैं। स्टार्मर ने कहा कि उस समय उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि मेंडेलसन उनसे झूठ बोल रहे हैं। जब उनसे एपस्टीन से उनके संबंध और क्या वे कभी एपस्टीन के परिसरों में ठहरे थे, इस बारे में सवाल पूछे गए थे। और अब खबर भारत से। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में एक अनधिकृत कोयला खदान में हुए विस्फोट में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है और आशंका है कि कई अन्य लोग फंसे हुए हैं। रॉयटर्स से मिले समाचार के अनुसार यह विस्फोट गुरुवार 5 फरवरी को स्थानीय समय अनुसार लगभग 10 बजे ईस्ट चेंतिया हिल्स जिले में स्थित एक रैट होल खदान में हुआ। इन खदानों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इनके सुरंगनुमा रास्ते इतने संकरे होते हैं कि मजदूर मुश्किल से उनमें से गुजर पाते हैं। डिप्टी कमिश्नर मनीष कुमार ने बताया कि स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद है और बचाव कार्य चला रही है, लेकिन उपकरणों की कमी के कारण खदान में फंसे मजदूरों तक पहुंचने के प्रयास फिलहाल निलंबित कर दिए गए हैं। इस घटना में 8 लोग घायल भी हुए हैं। मुख्यमंत्री ने इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक को 3 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज के लिए मुख्य समाचारों में बस इतना ही। अन्य खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए एसपीएस हिंदी के साथ हमारी वेबसाइट sps.com.au/hindi पर। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी आज की सुर्खियां और अब वादे के मुताबिक खबरें सुन ली हैं तो बारी है अब आज के सवाल की। आज का सवाल है एक धुन जिसे आपको सुनना है और बताना है कि ये कौन सा गीत है। आइए सुनते हैं इस धुन को। तो क्या पता लगा कौन सा गाना है? बता दीजिए मुझे, जवाब भेज दीजिए। अपने नंबर है 04397997667। मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा आपके संदेशों का। और फिलहाल हम प्रोग्राम को बढ़ाते हैं आगे। अब आ रही है पहली रिपोर्ट की। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने नकद दर में इस हफ्ते 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी करते हुए इसे 3.85% कर दिया। यह पिछले 2 वर्षों से ज्यादा समय में पहली बढ़ोतरी है। आरबीआई ने इसका कारण मध्य 2025 में मुद्रास्फीति में आई काफी हद तक बढ़ोतरी को बताया है। इस अंश में आइए नताशा गोयल के साथ जानते हैं कि समुदाय इस निर्णय को किस तरह से देख रहा है और विशेषज्ञ इस पर क्या राय दे रहे हैं।
तीन फरवरी 2026 का दिन, लगभग 2 साल बाद रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने अनुमान के अनुरूप ब्याज दरों में 0.25% अंक की बढ़ोतरी का ऐलान किया। इसके साथ ही नकद दर 3.85% हो गई। आरबीआई बोर्ड ने एक बयान में कहा कि 2022 में अपने उच्चतम स्तर के बाद मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन में काफी गिरावट आई थी, लेकिन 2025 की दूसरी छमाही में इसमें फिर से उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिली। मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण आरबीआई ने पिछले साल 3 बार ब्याज दरों में कटौती की थी, लेकिन इस साल की पहली ही नीति बैठक में दरें बढ़ा दी गई हैं। इस फैसले से होम लोन यानी मॉर्गेज लेने वालों पर क्या असर पड़ा है, सुनिए इस अंश में।
मेरा नाम अविनाश है और मैंने अभी घर लिया है मेलबर्न में। सो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से रोजमर्रा की जिंदगी पे काफी असर पड़ेगा। ईएमआई बढ़ गई है और घर का बजट काफी टाइट हो गया है। पहले जो थोड़ा बहुत बचता था अब वो भी लोन और इंटरेस्ट रेट में चला जाएगा, इसलिए खर्च करने से पहले अब दो बार सोचना पड़ेगा।
मेरा नाम सुनंदा है। आज के रेट हाइक से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ और इसका सीधा इम्पैक्ट हमारे मंथली बजट, हमारे डेली लाइफ एक्सपेंसेस पे पड़ता है। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि रेट हाइक होगा, एटलीस्ट होल्ड पे रहता। सो वी हैव टू प्लान आवर बजट अब अकॉर्डिंगली। नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन।
मेरा नाम मनीष है। मेरी एक यंग फैमिली है, वी हैव अ 4-year-old और वो नेक्स्ट ईयर स्कूल स्टार्ट करेगी। आज का जो इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है उससे हमारे आम हाउस होल्ड पे बहुत फर्क पड़ेगा। हमारा बजट ऑलरेडी ही टाइट चल रहा है, इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है। तो नेक्स्ट अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट वी नीड टू कट फ्रॉम आवर एक्सपेंसेस, वेदर हमारी वो डॉटर की कोई एसेंशियल सर्विस है लाइक स्विमिंग क्लासेस, या हमारी खुद की जिम मेंबरशिप, या फिर माइट नीड टू सेल वन ऑफ आवर कार्स। तो लेट्स सी, बट होपफुली वी प्रे कि नेक्स्ट ये इन्फ्लेशन काम डाउन हो जाए और इस साल या नेक्स्ट ईयर वी हैव नो मोर इंटरेस्ट रेट हाइक्स।
नीति भार्गव एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं और मॉर्गेज ब्रोकर हैं, वे कहती हैं।
सो सबसे पहले तो नताशा ये एक्सपेक्टेड ही था क्योंकि लास्ट जो हमारा जनवरी में इन्फ्लेशन रेट का आया था डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का आया था, तो मैंने कपल ऑफ डेज अगो ही बोल दिया था कि होएगा ही इंक्रीज। जिस हिसाब से डेटा बहुत स्टिकी है, इन्फ्लेशन रेट जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रिड्यूस नहीं हुआ, तो इंटरेस्ट रेट तो इवन लेंडर्स भी हमको उन्होंने ऑलरेडी बोलना स्टार्ट कर दिया था। तो देखिए ओवरऑल इसका अगर किसी के पास ऑलरेडी मॉर्गेज है और माने उनके पास मॉर्गेज 500,000 की है तो उनकी मंथली रीपेमेंट है, अगर उनका लेंडर पास कर देता है फुल जो इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज है तो उनकी मंथली मॉर्गेज रीपेमेंट में कुछ 75 से 90 डॉलर का फर्क आएगा, तो मॉर्गेज रीपेमेंट उनकी इंक्रीज होगी। और अगर कोई फर्स्ट होम बायर्स है तो नो डाउट उनकी बोरिंग कैपेसिटी रिड्यूस होगी, उनकी बोरिंग कैपेसिटी पे फर्क आएगा। बट मैं हमेशा ये बोलती हूँ इंटरेस्ट रेट हमेशा एक फैक्टर होता है नताशा, और बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती है जो कि हम मोस्टली मिस कर जाते हैं, हम क्योंकि इंटरेस्ट रेट के नॉइज में घूम जाते हैं।
तो आखिरकार आरबीआई ने ये फैसला क्यों लिया? इकोनॉमिस्ट नलिनी प्रसाद का कहना है कि आरबीआई का मकसद इन्फ्लेशन यानी महंगाई को नीचे लाना था।
The RBA did this essentially because inflation has been higher than expected for longer than expected. So the current rate of inflation was 3.8% and inflation has been increasing since the middle of last year. And it's well above the RBA's target range of 2-3%. So in order to lower inflation, the RBA has increased interest rates. A key challenge for the RBA has been the fact that demand for households for consumption and businesses for investment has increased quite strongly. And the RBA is concerned about whether the economy can meet this increase in demand by businesses and by households. If the economy can't meet this increase in demand, then prices are going to have to increase. And that's essentially what you've seen happen with higher inflation.
तो क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से ऑस्ट्रेलिया की इन्फ्लेशन रेट पर असर पड़ेगा? नलिनी कहती हैं।
So the interest rate hike should lead to reductions in inflation. So essentially it means that people with mortgages are going to have to pay more money, which leaves less money for them to spend on other things. If they spend less money on other things, then you have to take some demand out of the economy.
Nalini ka manna hai ki aane wale mahino mein RBA byaj dare aur bada sakti hai.
I would expect more increases in interest rates in the future. Inflation has been higher than expected, and I think the RBA wants to buy some insurance by increasing interest rates more in order to make sure that inflation goes down in the future. So for mortgage holders, clearly if you've got a variable rate mortgage, you're going to see an increase in your monthly mortgage repayments. And what someone does with an increase in their monthly mortgage repayments is going to depend on how much savings they have. So one thing we know is that households in Australia do have a decent amount of savings. So some households might be able to absorb this increase in interest rates without cutting back on their consumption by reducing their savings. But if people don't have enough savings, essentially this increase in interest rates is going to lead them to cut back on their consumption, you'd expect a fall in spending. If you're someone that's coming and looking to purchase a house, clearly higher interest rates mean that you can borrow less. And if you can borrow less, then you'd expect this to put downward pressure on house prices.
Neeti Bhargav ka kehna hai ki har mortgage lene wale ke liye apne budget par nazar rakhna ab behad zaruri ho gaya hai. Aur ye samajhna bhi ki agar aage byaj daron mein aur badhotri hoti hai, to us par kitna aarthik dabav padega.
देखिए जो जिनके पास ऑलरेडी मोर्टगेज है वो तो नो डाउट मोर्टगेज स्ट्रेस उनके ऊपर है. जो एवरेज फैमिली है, लेट्स जस्ट से हस्बैंड वाइफ और उनके दो बच्चे हैं, उनके ऊपर नॉट ओनली मोर्टगेज स्ट्रेस. अगर आपने इस बारी की सुना हो जो डेटा रिलीज हुआ था, हमारे विक्टोरिया में जो स्कूल फीस है वो सबसे ज्यादा पूरे ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है. और स्कूल फीस हर एक साल बढ़ती रहती है, तो वो भी पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग है जो हमें इंक्रीज हो रहा है, वो भी फैमिलीज के ऊपर प्रेशर डाल रहा है. ऑन टॉप ऑफ दैट अगर किसी की $100 भी किसी की मोर्टगेज में फर्क पड़ रहा है मंथली, तो नो डाउट ये उनकी फैमिली की बच्चों की एक्टिविटीज पे इम्पैक्ट करता है. जानने वालों में कई ऐसे मेरे क्लाइंट्स होते हैं जो जैसे बच्चों की एक्टिविटीज बंद कर देते हैं, स्विमिंग बंद कर दी या ट्यूशन के सेशन रिड्यूस कर दिए. तो अगर हम इसको माइक्रो लेवल पे देखें तो डे टू डे बहुत फर्क पड़ता है लोगों की उसमें. स्ट्रेस लेवल्स इंक्रीज होते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं. तो ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा एक वास्ट टॉपिक है जो अगेन फैमिली टू फैमिली इम्पैक्ट तो डालता है. एंड देयर इज प्रेशर और देयर इज ये जो डर का है माहौल की अभी इस साल 2026 में हम क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे. तो इस टाइम पे आई थिंक मुझे लगता है कि एक स्ट्रेस टेस्ट करना जरूरी है आपकी मोर्टगेज के साथ, ताकि अगर और एक या दो इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो आप कैसे अपने बजट करते हैं मंथली का, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है.
अब RBA के इस निर्णय के बाद चार बड़े बैंकों ने, जिनमें शामिल है कॉमनवेल्थ बैंक, NAB, ANZ और वेस्टपैक, ने भी घोषणा की कि वे होम लोन के वेरिएबल ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी कर रहे हैं. कॉमनवेल्थ, NAB और ANZ की बढ़ी हुई दरें 13 फरवरी से लागू होंगी, जबकि वेस्टपैक की दरें 17 फरवरी से प्रभावी होंगी. आपको बता दें, इस पॉडकास्ट में दी गई जानकारी सामान्य है और अपनी परिस्थितियों के लिए किसी विशेषज्ञ से संपर्क करना जरूरी है. इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है नताशा कॉल ने SBS हिंदी के लिए.
SBS हिंदी पर आप जुड़े हुए हैं स्वाति शर्मा के साथ. दोस्तों, इस रिपोर्ट के बाद अब समय हो गया है पहले ब्रेक का. अंतराल के बाद आपको बताऊंगी आज के गिव अवे के बारे में, क्या गिव अवे है, और साथ ही में मिलवाएंगे आपको न्यूरोसर्जन डॉक्टर रौंधिर जिथू से, जिन्हें हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेडल से सम्मानित किया गया है. और ब्रेक पर जाने से पहले आज का सवाल एक बार फिर, आपको पहचाननी है ये धुन और बताना है कि ये कौन सा गाना है. तो जल्दी से अपने जवाब लिख भेजिए, नंबर है 0439-799-767. मैं हाजिर होती हूँ इस छोटे से ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है SBS हिंदी पर, मैं हूँ स्वाति शर्मा. तो चलिए अब आइए जानते हैं आज के गिव अवे के बारे में. तो SBS साउथ एशियन आपको मौका दे रहा है फरवरी और मार्च 2026 में अपनी पसंदीदा क्रिकेट टीम को स्टेडियम में जाकर लाइव चीयर करने का. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया और भारत की टॉप रैंक महिला क्रिकेट टीम एक बेहद रोमांचक मल्टी फॉर्मेट सीरीज में आमने सामने होंगी. तो फिलहाल हम दे रहे हैं 15 फरवरी को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच होने वाले महिला क्रिकेट मैच के लिए डबल पास जीतने का मौका. तो उसे पाने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ एक आसान सा सवाल है जिसका जवाब देना है. सवाल है कि भारतीय या ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम में आपकी पसंदीदा खिलाड़ी कौन है और क्यों. तो जल्दी से जवाब भेज दीजिए, नंबर है 0439-799-767. फिलहाल आइए, जब तक आप जवाब भेजते हैं हम रुक कर लेते हैं कि भारत में आज क्या चल रहा है.
भारत और मलेशिया अपने आपसी रिश्तों को मजबूती देने का प्रयास कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिवसीय मलेशिया दौरे पर जाएंगे. इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते होने की संभावना है. विदेश मंत्रालय में सचिव पी कुमरन ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा,
PM will hold bilateral discussions with the Prime Minister of Malaysia. They will review progress under the India-Malaysia Comprehensive Strategic Partnership especially in priority areas of cooperation such as trade, investments, defense, security, semiconductors, digital technologies, renewable energy, education, healthcare and people-to-people exchanges.
सेमीकंडक्टर क्षेत्र में मलेशिया के साथ भारत सहयोग बढ़ाना चाहता है, इस बारे में पी कुमरन कहते हैं।
मलेशिया हैज अ वेरी स्ट्रांग सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, समथिंग लाइक 30% ऑफ देयर एक्सपोर्ट्स रिलेट टू सेमीकंडक्टर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स, सो दे हैव अ रियली स्ट्रांग परफॉर्मेंस ओवर मेनी इयर्स इन द एरिया ऑफ सेमीकंडक्टर्स, दे हैव ऑलमोस्ट 30-40 इयर्स एक्सपीरियंस दोस एरियाज. So we are in the process of establishing a multi-layered collaboration arrangement through a G2G MOU, semiconductor industry-led collaborations and also R&D.
संसद का बजट सत्र जारी है, लेकिन सदन में और सदन के बाहर नेताओं का एक दूसरे पर टीका टिप्पणी भी जारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब लोकसभा में नहीं दिया, इसके लिए कांग्रेस के सांसदों को जिम्मेदार ठहराया गया है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि प्रधानमंत्री को सदन में आने से उन्होंने रोका था क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ कुछ अप्रत्याशित घट सकता था. ओम बिरला ने कांग्रेस सांसदों की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को खतरा बताया. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा,
There is no question of anybody raising any hands on the Prime Minister, trying to hurt him or any such thing. There is no question. So it is absolutely wrong of anybody to say that there was any such plan. There was no such plan. But if you're going to allow your members to stand and quote books and talk nonsense, then this side, the opposition benches are going to protest. And I'm sorry, but the Prime Minister is now hiding behind the Speaker. They are making the Speaker say all this. Because yesterday he did not have the guts to come in the House.
भले ही लोकसभा में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा में भाग नहीं लिया, लेकिन राज्यसभा में उन्होंने जवाब दिया है. अपने जवाब के दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर खूब निशाना साधा, खासतौर पर गांधी नेहरू परिवार उनके निशाने पर रहा. प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार और स्वयं का पीठ कई बार थपथपाया. उन्होंने स्वयं को देश सेवा के लिए समर्पित बताते हुए कांग्रेस पर उनकी राजनीतिक हत्या का षड्यंत्र करने का आरोप लगाया. प्रधानमंत्री के भाषण का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा,
मोदी जी ने आज उन लोगों को दिखा दिया जो मोदी जी का कब्र खोदने की बात करते हैं, वो देश के लिए गरीबों के लिए काम करते रहेंगे और उनके आशीर्वाद से बढ़ते रहेंगे और कब्र खोदने वाले का राजनीतिक कद्र खुद खुद जाएगा.
राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट किया. नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष की आवाज दबाने और पूर्व प्रधानमंत्रियों के अपमान करने का आरोप भाजपा पर लगाया है.
आज को आधुनिक भारत जो आपको दिखता है, ये आधुनिक भारत नेहरू जी ने बनाया और इस देश में लोगों में जो जागृति लाई इंदिरा गांधी जी ने लाई. ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं के बारे में अगर वो सदन में बात करते हैं और बात करके ये लोग उन हमारे पार्टी को और हमारे नेताओं को अपमान करने का काम करते हैं, इसलिए हम कंडम किए हैं, हमको बात भी करने नहीं दिए. इसीलिए सारे पार्टी के नेता लोग ये तय किए कि अगर वो बात करने नहीं देते तो हम लोग वॉकआउट करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए.
भाजपा ने कांग्रेस पार्टी पर संसद को बाधित करने का आरोप लगाया है. भाजपा नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते हैं,
देखिए ना, कांग्रेस के पास मुद्दा है ना, जो इंडी गठबंधन है उनके पास कोई विषय है, और वो लगातार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत गति से बढ़ रहा है उसको विपक्ष, मुझे ऐसा लगता है कि रोकने की कोशिश कर रहा है.
लोकसभा में पूर्व प्रधानमंत्रियों पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के चरित्र पर सवाल उठाने वाले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पहनावे पर कटाक्ष किया है।
कांग्रेस के मैक्सिमम नेता, इवन उनकी जो दादी थी इंदिरा जी, वो भी तो हमेशा जो है खादी का साड़ी पहनती रही या साड़ी पहनती रही। उनकी मदर जो है विदेशी होते हुए भी साड़ी पहनती है। इस आदमी को देखिए कि ये आजादी प्राप्त करने के लिए, सरकार बनाने के लिए, अपनी सरकार हो इसके लिए इवन उनके जो परनाना थे वो भी मैक्सिमम पजामा कुर्ता पहनते थे या नेहरू कोट पहनते थे, बंद गले का कोट पहनते थे। ये व्यक्ति एक फटीचर जैसा जो है पैंट पहन लेता है, एक टी शर्ट पहन लेता है। कभी आपने देखा है पार्लियामेंट की गरिमा का इससे बड़ा हनन आपने देखा है?
भाजपा और कांग्रेस पार्टी के बीच जारी टकराव का सीधा असर संसद के बजट सत्र पर पड़ रहा है। आज सत्र के आठवें दिन बजट पर चर्चा होनी है, लेकिन हंगामा थमने का कोई आसार नहीं दिख रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक अहम घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी ने इस बार किसी भी गठबंधन के बिना मैदान में उतरने का ऐलान किया है। पार्टी का मानना है कि वाम दलों या टीएमसी के साथ समझौते का संगठन पर बुरा असर पड़ता है। और अंत में थोड़ी चर्चा महिला क्रिकेट की। विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL का खिताब इस बार बेंगलुरु की टीम RCB ने अपने नाम कर लिया है। RCB की यह दूसरी खिताबी जीत है। गुरुवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में बेंगलुरु ने दिल्ली को पराजित कर दिया। दिल्ली की टीम लगातार चौथी बार प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जीत उसे नसीब नहीं हुई। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
SBS हिंदी पर मैं हूँ स्वाति शर्मा। भारत की खबरों के बाद दोस्तों अब वक्त हो गया है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर और बहुत सी बातें होंगी, बहुत सी और भी रिपोर्ट हैं आपके लिए, पर फिलहाल आज आपको मेरे सवालों के, दो सवालों के जवाब देने हैं। पहला तो है एक गिव अवे के लिए, जिसमें हम आपको क्रिकेट मैच के पास जीतने का मौका दे रहे हैं, जिसमें लिए मुझे आपको मुझे बताना है कि इंडिया या ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम में से आपकी फेवरेट खिलाड़ी कौन है और क्यों। और साथ ही दूसरा सवाल जो है वो है, आपको पहचाननी है ये धुन और बताना है कि कौन सा गाना है ये। तो जल्दी से नंबर है मेरा 04397997667, इस पर मैसेज भेज दीजिए और मैं हाजिर होती हूँ इस छोटे से ब्रेक के बाद।
sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए, ताजा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है SBS पर। इस वक्त चल रहा है हिंदी कार्यक्रम और मैं हूँ स्वाति शर्मा। तो अब दोस्तों हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेडल से सम्मानित न्यूरोसर्जन डॉक्टर रोंधीर जीथू से, जिनके लिए चिकित्सा केवल एक पेशा नहीं बल्कि सेवा और मानवता का संकल्प है। आइए सुनते हैं उनसे की गई शशि कुमार की यह बातचीत।
नमस्कार, आप सुन रहे हैं SBS हिंदी और मैं हूं शशि कुमार। आजकल हम आपकी मुलाकात ऑस्ट्रेलिया डे ऑनर्स से सम्मानित भारतीय समुदाय के ऑस्ट्रेलियाइयों से करा रहे हैं। इसी कड़ी में आज मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं डॉक्टर रोंधीर जीथू से, जो एक ऐसे न्यूरोसर्जन हैं जिनकी पहचान ऑपरेशन थिएटर से निकलकर दूर दराज के समुदायों, प्रशांत द्वीपों और ऑस्ट्रेलिया की सैन्य सेवा तक फैली हुई है। आज SBS हिंदी में हम उनकी उस यात्रा को जानेंगे जहां चिकित्सा सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि सेवा का जीवन दर्शन है। डॉक्टर रोंधीर जीथू, आपको ऑस्ट्रेलिया डे ऑनर्स से सम्मानित होने की बहुत बहुत बधाई और SBS हिंदी में आपका स्वागत है।
थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट दैट। वी एक्सेप्ट दिस अवार्ड नॉट एज अ पर्सनल अचीवमेंट but rather we accept it on behalf of the, like a community.
जब आपको पता चला कि आपको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेडल से सम्मानित किया जा रहा है, तो उस पल आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी?
I was pleased, but I was more pleased for my family. It's more for not personal recognition, but recognition for service to the community. It's the family that, you know, gets stressed when you leave home and go to work in remote areas and so on. So it's also acknowledgement that I spent a lot of time in the public hospital system, not in private practice. Mm-hmm. And acknowledgement of service that goes beyond the hospital. So I do work for the Australian Defence Force as a reservist.
हमारे श्रोताओं को आप अपने जीवन के सफर और परिवार के बारे में थोड़ा बताइए।
Yes, sure. So I'm someone from Indian diaspora. My ancestry is traced back to Bihar and to Lucknow, but I'm fourth generation Indian person born and raised in South Africa. My great-grandparents migrated as dairy farmers near Durban, a place called Durban in South Africa. So Durban is famous for Mahatma Gandhi having gone there to do his first job as a barrister. And he lived in Durban for 12 years and he had a farm called Tolstoy Farm that was before he came to India. So, in fact, my great-grandfather was involved with Gandhi's organization. At that time, Gandhi had formed an organization called Natal Indian Congress, a precursor to the Congress Party. And so he was involved with a civic engagement in this. I'm talking about 1890s and so on. So my father mother passed away, but my father is a doctor, was a doctor. He's a general practitioner. And my mother was an academic professor of anthropology. So I came to Australia in 2002 as a qualified doctor, and I did neurosurgical training at the Royal Melbourne Hospital.
आपने अपने करियर में ज्यादातर वक्त पब्लिक हॉस्पिटल सिस्टम में बिताया है। प्राइवेट की बजाय सार्वजनिक क्षेत्र को ज्यादा तवज्जो देने की क्या वजह है?
Well, I do have a small private practice, but mainly my career is in the public system. The reason is, firstly, in the public system, as a surgeon, we are able to provide certain type of care that you don't see, patients you don't see in the private. Yes. Also, you get a chance to work with the junior doctors and the training surgeons. And I'm also involved in examining for the graduating neurosurgeons as well.
डॉक्टर जीथू, आप बाद में ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स में शामिल हुए, तो इस बारे में थोड़ा बताइए।
Yeah, I mean, although I had a family history, my early part of the career, especially when my children were young, we really had no time to do these military pursuit because it involves spending a lot of time away from home. But I was involved with training the defense medical officers in surgical fields and in trauma training. And so I was actually invited to join by some of the senior military people. So I joined in my mid-40s.
आपके करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण दौर कौन सा था? उस अनुभव के बारे में थोड़ा बताइए।
I would say some of the most challenging periods of my career have been when I've been working for the Pacific Island program through our College of Surgeons. So the Australian government sponsors surgical care in the Pacific Islands. So I've been to some remote hospitals in Fiji. So in these hospitals, I came across a very young child with tuberculosis of the covering of the brain. It's called tuberculous meningitis. And the water inside the head was blocked. And then they didn't have many types of tubing, we call a shunt, to drain the water. But the hospital did have a type of shunt that they is purchased from India. It's a low-cost shunt called a Chabra shunt. And so I was able to insert this into the child, and that was a life-saving surgery for the child. So what we do sometimes is born out of necessity, where you don't have the luxury of expensive equipment or first world setup. And so that is, you know, some tough decisions to make. Otherwise, if you left the child would die.
आप अपने जीवन में प्रेरणा और शक्ति कहाँ से प्राप्त करते हैं?
So motivation and strength, I think, especially as a neurosurgeon, you have to be a little bit philosophical and thoughtful about your life, because in our type of surgery, we don't always get a good result. Once the brain is injured, no matter what we do, we can't bring back that function. So the famous poet Tagore, he had a saying. He said, when he slept, he dreamt that life was joy. But when he woke up, he realized that life was service. But when he acted, he realized that service was joy. I thought sort of sums up a lot of my thinking, is that we try to promote the philosophy of service to the community as the way forward. And in many of the Hindu philosophy, there's a concept of karma yoga, of devotion to God through service to the community, service to others.
भारत की आपकी जड़ें, साउथ अफ्रीका में बचपन और ऑस्ट्रेलिया में करियर, आप तीनों दुनिया की अपनी पहचान संस्कृति के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं?
Yes, it's an interesting one. I think there are a lot of common shared values, like love of cricket, for example, is common across all the countries. So it's also, for example, the English language is common. So I think certainly nowadays I would see myself as Australian, but someone who has a very strong Indian culture, and then there's the South African history behind that. So I think it's really where your life is now, but we always cannot forget our strong culture. For example, the Indian culture that goes back, you know, thousands of years.
आज के युवाओं, खासकर भारतीय समुदाय और प्रवासी समुदाय के बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
I feel, especially for the younger generation, is they should look outwards to the communities that they are within and see what is the need in that community, and then see how you can serve that need. It's like as a surgeon, if we look after our patients to the best of our abilities, then all the other factors in society will come along automatically to support us.
अंत में हमारे SBS हिंदी के श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
हिंदी इज एन अमेजिंग लैंग्वेज. आई डोंट स्पीक एनी ऑफ इट, बट माय मदर कुड एंड माय ग्रैंड पेरेंट्स. एंड आई वुड से दैट मोर पीपल शुड बी ट्राइंग टू लर्न टू स्पीक हिंदी. आई नो वाचिंग मूवीज एंड सो ऑन इन बॉलीवुड इज वेरी पॉपुलर. I still need the subtitles, but I feel there's a very rich heritage of spoken and written Hindi, and leading on to that, the root language of Sanskrit. So this is a very rich history that should not be forgotten, and it should be read and practiced every day.
डॉक्टर रोंधीर जीथू जी, SBS हिंदी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
माय प्लेजर, थैंक यू फॉर हैविंग मी.
तो दोस्तों, डॉक्टर रोंधीर जीथू की कहानी हमें याद दिलाती है कि असली सम्मान पदक में नहीं बल्कि उस भरोसे में होता है जो एक डॉक्टर अपने मरीजों, अपने परिवार और अपने समुदाय के दिलों में बनाता है. इसी के साथ शशि कुमार को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए SBS हिंदी.
Thank you.
SBS हिंदी पर आप जुड़े हुए हैं स्वाति शर्मा के साथ। दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारी किसी भी रिपोर्ट, न्यूज या इंटरव्यू को अगर आप दोबारा सुनना चाहते हो अपने समय पर, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, पता है sbs.com.au/hindi, या फिर हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी जा सकते हैं। साथ ही हेमलता जी, आपका मैसेज आ गया है, आपने नाम नहीं लिखा पर मुझे आपके शब्दों से पता लग गया है कि आप ही का मैसेज है। आप लिखती हैं, नमस्ते स्वाति जी एंड योर टीम, वेरी गुड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम न्यूरोसर्जन डॉक्टर रणधीर कुमार, वेरी नाइस प्रोग्राम, थैंक्स। थैंक यू सो मच हेमलता जी आपके मैसेज के लिए। उसके अलावा मेरे पास मनी का भी मैसेज आया है और हार्दिक खेतानी जी का भी मैसेज आया है। एक और मैसेज आया है जिन्होंने आज के सवाल का जवाब दिया है पर आपने नाम नहीं लिखा है, आपका नंबर है लास्ट में 970, पर आप अपना नाम भी बता देते तो बहुत अच्छा लगता। खैर, इसके साथ ही आज आपके लिए मैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना लाई हूँ। मैं बहुत उत्साहित हूँ आपके साथ इस गाने को शेयर करने के लिए। इसे मैंने भी आज पहली बार सुना और क्या ही सुना। आइए पहले सुनते हैं, फिर बात करते हैं इस गाने के बारे में। इतना सुंदर गाना मैंने बहुत समय के बाद सुना है। गाना नहीं है दरअसल, ये गज़ल है जुआन एलिया की लिखी हुई और इसे गाया है अनीत जिंगार ने। बहुत ही सुंदर, मैंने आज सुबह सुबह ट्रेन पर आते हुए सुनी और बस मेरे दिलो दिमाग पर छा गई। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद आई होगी। इसी के साथ वक्त हो गया है प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रखेंगे मस्ती का सफर, जहाँ आपको मिलवाऊंगी ब्रिटिश इंडियन नर्तक आकाश ओडेद्रा से, और जारी रखेंगे गीतों का सफर, तो कहीं ना जाइएगा। जुड़े रहिए SBS हिंदी पर और मेरे सवालों के जवाब भेजते रहिए। एक तो आपको बताना है भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम में से आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है और क्यों, जिसे जिसका जवाब देने पर आप जीत सकते हैं डबल पासेस 15 फरवरी को सिडनी में होने वाले मैच के लिए। और साथ ही आज मैंने आपको धुन सुनाई है, उसका आपको मुझे जवाब देना है, बताना है कि ये कौन सा गाना है जो आज मैं आपको सुना रही हूँ। तो भेज दीजिए अपने जवाब, नंबर है 04397997667। मैं हाजिर होती हूँ इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप जुड़े हुए हैं स्वाति शर्मा के साथ। तो प्रोग्राम का आखिरी पड़ाव आ चुका है और SBS हिंदी पर अब प्रोग्राम का रुख हम कर रहे हैं थोड़ा संगीत में ही। उससे पहले आकाश ओडेद्रा, जिनकी मैं प्रोग्राम की शुरुआत से जिक्र कर रही हूँ, उन्हीं से हुई बातचीत सुनते हैं। ये साक्षात्कार अंग्रेजी में है, जिसे NITV द्वारा, SBS की जो NITV है उनके द्वारा लिया गया था। नमस्कार, मैं हूं स्वाति शर्मा। सदियों से दक्षिण एशिया की कहानियों, शायरी और सूफी परंपराओं में एक नन्हा सा परिंदा बार बार लौटता है, बुलबुल। प्यार, तलाश, आजादी और रूहानी सफर की प्रतीक इस बुलबुल को अब मंच पर जिंदा कर रही है मशहूर ब्रिटिश डांसर और कोरियोग्राफर आकाश ओडेद्रा की प्रस्तुति सॉन्ग्स ऑफ द बुलबुल। अपने ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान आकाश ओडेद्रा ने हमारी SBS के NITV की सहयोगी कैरी ली बेरी से बातचीत की, भारतीय शास्त्रीय नृत्य सिडनी ओपेरा हाउस में परफॉर्म करने और भारत और पर्शिया से अपने कनेक्शन पर। आइए सुनते हैं उस बातचीत का एक भाग।
कथक इज अ फॉर्म दैट आई हैव ट्रेन्ड इन। कथाकार इज अ स्टोरी टेलर, कथा इज स्टोरी। सो अ लॉट ऑफ दीज फॉर्म्स दैट कम फ्रॉम फोक और कम्युनिटीज are about storytelling, and storytelling is not just something that we do to entertain, it's something we do to inspire.
Sydney Opera House is such an iconic venue. What did it feel like to perform on this stage, and did the space influence your performance in any way?
They say that sometimes places and people become sacred and special to you. Melbourne Arts Centre for me is very sacred and very special because I premiered my work Samsara there on that same stage I did Bulbul on, and actually it's where I feel like my career took a turn. I felt like on that stage is where I found my voice as a choreographer and a creator. So to then come back to the same space, which then kind of changed the trajectory of life, and present a piece which gained a critical acclaim in its own right, and to put it into that sacred space felt very special. So I felt like I was sharing something with my art family in Melbourne. So to perform Bulbul on that stage with some of the audience members who saw the first ever show of Samsara felt very special.
And the bulbul is a powerful symbol in Persian and South Asian cultures. For Indian and Hindi-speaking audiences, what does the bulbul represent for you?
I love birds. I feel like, I mean, I have a lot of animals myself, but in particular birds. I like the fact that they can take flight. I like the fact that they sing when there's a sense of joy. I like the fact that they communicate through song and melody. So there's a lot about the bird itself that I feel connects to me as an individual, and the beauty of the freedom that they represent. And the bulbul in particular is a bird that's been entwined in mythology, has also inspired poets to create poetry. And there's a particular relationship between the blooming of flowers or roses and the bulbul, that they sing their sweet melody when the roses bloom. And blooming roses represent spring, and spring represents life. So for me, birds are a symbol of life, and the bulbul is a poetic symbol of art.
Kathak has deep roots in India, yet this work travels from Persia to the Indian subcontinent. How do you see Indian classical dance evolving through such global collaborations?
So borders are something that I find that are interesting. They shift with empires, they shift with rebellion, they shift through seekers, and they're constantly moving and flowing. I feel in this century they've become more hard-lined rather than penetrable. And there was a definite flow of literature, knowledge, dance and culture from India through Persia into China, into the Arab continent and beyond. So I feel that we are, people claim, you know, culture is exclusive to them. But I feel even your unique culture is a confluence of different empires and different experiences. So I feel the relationship of Kathak, which for me is the form that I started in, is an interesting relationship, especially to Persia, because the Mughals had ruled India. So Kathak is heavily influenced by the Islamic kind of arm of culture and rule that came into India, but it's also equally influenced by the Hindu tradition, which is the original religion of and philosophy, sorry, of that area. And it's the only form that I know of that combines two kind of opposing ideologies to bring them and create a confluence, a river, where these two ideologies, which ordinarily oppose each other, I mean, if you look at it at face value, come together to merge. So I feel the Persian subcontinent is part of my Kathak, and my Kathak is part of the Persian subcontinent.
Akesh, thank you so much for your time today here on NITV Radio. It's been a really wonderful chat.
Thank you so much. Thank you.
आकाश उरेद्रा से हुई बातचीत का यह केवल एक हिस्सा है। इस पूरे साक्षात्कार का पॉडकास्ट आप SBS ऑडियो ऐप पर जब चाहें सुन सकते हैं। धन्यवाद। तुषार जी, आपका मैसेज आया है। आपने लिखा है, MS धोनी इज माई फेवरेट क्रिकेटर। आप वाकई करोड़ों के फेवरेट हैं MS धोनी, पर आज टिकट्स जीतने के लिए जो सवाल मैंने पूछा है वो है, महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों में से आपको मुझे बताना है कि कौन है आपकी फेवरेट और क्यों। और अपने जवाब आप भेजते रहिए। SBS साउथ एशियन की सभी टीम्स की तरफ से ये कॉन्टेस्ट चलाया जा रहा है, तो आखिर में एक ड्रॉ के जरिए दो लकी विजेताओं को चुना जाएगा। तो आज के प्रोग्राम में मेरा साथ जिन सबने दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक खेतानी जी, मणि जी, हेमलता पुरोहित जी, तुषार यादव जी और एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के शो में मेरे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करती हूँ आज का शो आपको पसंद आया होगा। कल फिर हम हाजिर होंगे इसी समय नए प्रोग्राम, नई खबरों, नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सेहतमंद रहें और मुझे दीजिए इजाजत। SBS के हिंदी कार्यक्रम में आप सुन रहे थे स्वाति शर्मा को। शुभरात्रि।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।